Shanti. Good morning. पांडव भवन में आते ही दादियों की, साकार बाबा की, अव्यक्त बाबा की स्मृतियां इमर्ज होती. और आज बाबा ने जैसे गीत में था, धन्य धन्य हो गए. बाबा ने कहा, कोई भी आपसे पूछे कि परमात्मा कहाँ रहता, आप क्या उत्तर देंगे? हमारे दिल में रहते. और हम कहाँ रहते? बाबा के दिल में रहते. तो आज बाबा ने प्यार भरी बातें सुनाई है, परंतु शिक्षाएं भी बहुत ही गहराई से बताई है. बाबा ने कहा है कि आप सब अपने को बालक तो समझते हो, परंतु आप मालिक हैं, और वो भी डबल मालिक है. उस बात में नंबर वार हो जाते. मालिक किस बात में? एक तो जो परमात्मा खजाना है उसके मालिक, और दूसरा स्वराज अधिकारी, अपने मन का राजा. और मन है ही चंचल, मन बहुत खेल करता. तो व्यर्थ संकल्प आने के अलग अलग कारण बाबा ने बताए. एक तो ये बताया कि जहां मेरापन आता, मेरा मान शान आदाब अभिमान सूक्ष्म में भी होता, और साथ साथ अपमान. यदि अभिमान है फिर कोई इतना ध्यान नहीं देते, तो फिर उसका अपमान महसूस होता. तो ये दो बातों के कारण व्यर्थ संकल्प आते. और बाबा चाहते कि बच्चे अपने स्वमान की स्थिति में रहे. और फिर बुद्धि राजा है, परंतु मन फिर भी अपनी चंचलता कब करता? जब आप साइड सीन को देखने लगते. साइड सीन में आपका ध्यान चला गया तो फिर मन उस तरफ भागने लगता, और आपने श्रीमत का लगाम हाथ में पक्का नहीं रखा, तो इस कारण से फिर मन को चांस मिल जाता है चंचलता करना. तो बहुत गहरी बातें भी और बहुत प्यार भरी बातें भी दोनों बाबा की मुरली में है. ये है 3 फरवरी 2006 की मुरली, अव्यक्त रिविजन कोर्स. परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो. आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं. सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं. परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहां लाया है. ये परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो, और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया. लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए. कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? परमात्म बाप तो हमारे साथ है, हम उनके साथ रहते हैं. परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता और हम उनके दिल में रहते, ऐसे अनुभवी है ना? है अनुभवी। क्या दिल में आता? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा प्यार की निशानी, जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाती है। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हरेक बच्चा, बाबा क्या चाहता, हरेक बच्चा बाप समान बन जाए, हरेक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप की दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? संकल्प और स्वप्न में भी रोचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। बाप दादा, आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खींचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प ये भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं? किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते? जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप से रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं? रॉयल रूप में अभिमान और अपमान, व्यर्थ संकल्प के रूप में वॉर तो नहीं करते? अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता। बहुत करके जो भी बाबा के पास छोटे आयु में आए, मैं समझती कहीं यहां ऐसे बैठी है तो वो तो जरूर समझते होंगे कि बाबा ने ये हमें देन दी है। सेवा में अनेक विशेषताएं जो आगे बढ़ते जा रही हैं और वो दिखाई दे रही है। हम जब बाबा के पास आए, बाबा का ज्ञान तो नहीं था, परंतु कोई ऐसी अनुभव की बातें भी नहीं थी, कोई विशेषताएं भी नहीं थी, परंतु बाबा ने सब कुछ सिखाया और आगे बढ़ाया। तो बाबा कहते कभी भी उसको ये बात भूले नहीं कि भगवान की देन है। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, देखने रूप बन जाता है और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता। जो जानती भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। ये व्यर्थ संकल्पी संपूर्णता से दूर कर लेती है, क्योंकि बाप दादा यही चाहती है, स्वमान, न अभिमान न अपमान, यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। जिस समय बाबा क्लियर करके कोई भी बात बताते, दिल मानती है, विवेक मानता कि हाँ बाबा बिल्कुल सही कह रहा, और फिर जिस समय युद्ध के मैदान में आते वो बातें फिर भूल जाती। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखनी चाहती है। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज के मालिक, दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी है, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही। लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक, तो मालिकपन में नंबरवार हो जाती, मैं बालक सो मालिक भी हूं, वर्षे का खजाना प्राप्त है। इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उसमें नंबरवार हो जाती। स्वराज अधिकारी मालिक इसमें विशेष विघ्न डालता है। स्वराज अधिकारी मालिक उसमें विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज अधिकारी है, तो स्वराज अधिकारी अर्थात राजा। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, मन का मालिक बन वो फिर विश्व का मालिक का अधिकार। ऐसे ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है, ये व्यर्थ संकल्पी मन में उत्पन्न होती है, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल होने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो, वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास श्रीमत का लगाम है, अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता तो मन चंचल बन जाता। क्यों लगाम ढीला होता? क्योंकि कहां न कहां साइड सीन देखने में लग जाती है, और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता। तो मैं बालक सो मालिक हूं, इस संगति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक, तो स्वराज का भी मालिक, डबल मालिक हूं। अगर मालिकपन कम होता तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन क्या ये मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार, ये मेरा है, मेरा संस्कार कहना राइट है? और फिर पूछते हैं, राइट है, मेरा है या रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हो? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण। बाबा के बच्चे स्टडी करके आए हैं, अच्छी बात है, पहले से ही स्टडी करके मुरली सुनो तो फिर डबल अंडरलाइन होती। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया, अशुभ चीज दिल में बिठा दी है, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। इसीलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है। बाबा चाहते हैं कि बच्चे मेहनत बिल्कुल न करे, सहज सहज अपने ठिकाने पहुंच जाए, परंतु बाबा फिर देखते हैं युद्ध करते हैं और उसमें भी थक जाते हैं बच्चे, तो युद्ध किस बात की? कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुद्ध और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। जब ये संकल्प आता है, वाणी में भी आता, मेरा संस्कार, तो चेक करो, ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हरेक बच्चे को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखनी चाहती है। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो जाता। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखने चाहती है। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होंगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते हैं, जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती, ठंडाई का भी अनुभव कराती, तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई न कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव, अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सुनी हुई चीज भूल सकती लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें, तो बाप दादा ने देखा तो सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हैं, हर एक वर्ग भी कर रहा है, आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए है ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया जिसमें लक्ष्य था 1,00,000 लोगों को इकट्ठा करना। वो पहले तो सब बड़े बड़े शहरों में हुआ, फिर छोटे छोटे शहरों में भी होता रहा, तो 1,00,000 इकट्ठा करना बाबा उसको मेगा प्रोग्राम कहते थे। संदेश तो दे दिया, अपना उलाना निकाल लिया, उसकी मुबारक हो, लेकिन अब तक ये आवाज नहीं फैला कि ये परमात्म ज्ञान है, ब्रह्मा कुमारियां कार्य अच्छा कर रही है, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन ये ही परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, ये आवाज फैलाओ। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है वो बहुत कम अनुभव करते हैं। जब वो अनुभव हो और वो आवाज फैले तो बाबा की प्रत्यक्षता। आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रही है, अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहां तक ठीक है, नॉलेज अच्छी है इतना भी कहती है, लेकिन परमात्म नॉलेज है ये आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वत ही करते हैं। तो बाबा के बच्चे ऐसी सेवा करें जो ऐसे लोगों को बाबा के सामने लाए जो बाबा दृष्टि से ही कहे हाँ ये मेरा सिक्की लता बच्चा है, ये मेरा वारस क्वालिटी बच्चा है। तो ऐसे प्लान बनाओ और भाषण में ऐसा कुछ जोहर भरो जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाए। ये गुरु की धारणा इसमें अटेंशन गया है, आत्मा का ज्ञान देते परमात्मा का ज्ञान देती ये कहती है, लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है, ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएंगी। परमात्मा आ चुका है, परमात्मा कार्य कर रहा है, यहां तक सबकी बुद्धियों को पहुंच जाना है। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। स्नेह ही मेजॉरिटी बनती है। वो क्या समझ के कार्य बहुत अच्छा है, जो कार्य ब्रह्मा कुमारियां कर रही है वो कार्य कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती है। लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नजदीक नहीं आती। क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियां क्या करती है, क्या इनकी नॉलेज है, वो समझने लगे हैं। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ जाए तो परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकता है क्या? जैसे आप भाग कर आ गए हो ना, ऐसे वो भी भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्म अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तो बाबा भी तो बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देंगी। अभी अच्छा है, यहां तक पहुंची है, अच्छा बनना है। वो लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन, अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से संगत बन, संगत बनाओ। कई बार बाबा ये दोनों बातें जोड़ लेते हैं, खुद स्टडी करो औरों को भी स्टडी कराओ, खुद उड़ते चलो तो औरों को भी उड़ाते चलो। अभी बाबा कहते हैं दिल को अपने को सेफ रखो हर प्रकार की बातों से। सेवा का चरण पंजाब जोन का है। हाथ हिलाओ, अच्छा है। जिस भी जोन को चरण मिलता है वो खुले दिल से आ जाते हैं। तो पंजाब जोन से 4000 आए थे। बाप दादा को भी खुशी होती कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेता। पंजाब को सभी कॉमन नीति से शेर कहते हैं, पंजाब शेर। और बाप दादा कहते शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है ना, ये सेवा सुनती रहे। हम ही कलप कलप के विजयी हैं। हर कलप के विजयी का नशा क्या होगा, स्थिति क्या होगी, आप वो अपने पास इमर्ज करो। थे हैं और कलप कलप बनेंगे, अच्छा है। पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रही है और बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जोन से स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाई है। तैयारी कर रहे हैं ना, सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए। वो भी कुछ रहा, माइट भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि भी हो रही, हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में ये प्रत्यक्ष होता है परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता वो बाप दादा देख रहे हैं। फौरन करेगा, फौरन भी कर सकता, या अपना पंजाब नंबर ले लो अच्छा है, सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है यही है यही है ये आवाज सुनाने का। अभी है ये भी है, ये है यही है यही है, तो पंजाब क्या करेगा? ये आवाज आ जाए यही है यही है, टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे, नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नियमता चाहिए ना। ये भी है, ये तो बहुत सुन लिया, जैसे आपके मन में बाबा 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 स्वत याद रहता, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया, वे भी कहे मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये आवाज चारों कानों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगा ना, सब तरफ से आवाज निकली आपने तो शुरू एक स्थान। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेगा, करना ही है, बहुत अच्छा। इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और दे अभिमान से अति न्यारे, बाप के अति प्यारे दे भान से अति न्यारे, बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप एकाग्र मन और एक रस स्थिति में रहने वाले बच्चों को चारों ओर के मित्र संबंधी समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले सन्मुख देखने वाले सभी लाडले सिखी लदे कलप कलप के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुना स्वीकार हो। कितने बाबा के बच्चे बैठे हैं, परंतु उसको पदम पदम मल्टीप्लाई करके बाबा वो एक एक को प्यार देते रहे, और साथ में डबल मालिक बच्चों को अब क्या कहेंगे, सबको तो प्यार दे दिया है, इतना गहराई से डिटेल में प्यार दिया, परंतु डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। बाबा भी अपना सिर ऐसे बच्चों के आगे झुकाते, दादी जी से मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है, शरीर भर नहीं भी चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही है। बाप की तो है ही, लेकिन सभी की है, सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। मैंने सबसे जो भी बैठे हैं उनसे पूछा, देखो सब यही कहते कि दादियां चाहिए दादियां चाहिए दादियां चाहिए, तो दादियों की विशेषता क्या है? बहुत सुंदर विशेषता बाबा ने बताई है। दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना। प्रैक्टिकल सभी ने देखा दादियों को, बाबा, बाबा की श्रीमत, बाबा का ज्ञान, बाबा की सेवा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना, मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है मन बड़ी कमाल करके दिखाता। कमाल क्या करता? चंचलता करता। मन एकाग्र हो जाए जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा, शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है समय, समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। देखो हॉल की शोभा कितनी अच्छी है, माला लगती है ना, और माला के बीच में माइक को बिठाते हैं। अच्छा, ओम शांति। वरदान, बहुत सारे वरदान तो मिल चुके हैं मुरली के अंदर, एक्स्ट्रा वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विशेष आत्मा की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी को भी आत्मा, सो परमात्मा, एक सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देना। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे लेकिन एक सेकंड में शांति का व अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए उस सेकंड में उसका अनुभव करें। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइलेंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का पर्दा साउंड, प्रत्यक्षता का दृश्य, प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। स्लोगन, बाबा के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। प्रत्यक्षता की बातें बाबा ने आज कई बताई है। भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए अपनी तैयारी करनी है। अव्यक्त इशारा, अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता, ऐसी श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारे कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करती है वैसे आगे चलकर संकल्प से सारे कारोबार चलेंगे। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। मैं सोचती हूं कि जो अव्यक्त फरिश्ते हैं, दादियां एडवांस पार्टी वाले, वो भी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से कारोबार चला रही हैं। तब हम देखते हैं सेवाएं कैसे बढ़ती जा रही है। दीदी के विशेषता, बालक और मालिक का बैलेंस। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस था। जो यथार्थ बात होती वो मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती तो बालक बन उससे भूल जाती। कभी बहस व डिबेट में समय नहीं गवाती। दीदी बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ के हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। ऐसे ही हम सबको बालक और मालिकपन का बैलेंस रख अपनी स्थिति एक रस उदानी है, बाबा की उंगली पकड़कर चलना है। ओम शांति।
ओम शांति। आबू निवासी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है, अभी क्लास के तुरंत बाद सभी आबू निवासी भाई बहने पांडव भवन में फल विभाग में पहुंचेंगे। गीता बहन जी आपसे विशेष मिलेंगे। और आज हम देख रहे हैं आदरणीय दीदी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम लोग भाग्यवान हैं कि बीच बीच में और समय के हिसाब से मिलना होता रहता है। और अभी दीदी का मास चल रहा है, वैसे तो दीदी जी चक्रवर्ती बन करके पूरे विश्व का चक्कर लगाते, बहुत सेवाएं करते रहते हैं। तो अभी क्लास में 10 मिनट पड़े हैं दीदी, आप हमें कुछ सेवा समाचार या दीदी की विशेषताएं, इट्स अप टू यू, कुछ सुनाएं।
जी, ड्रामा अनुसार इस बारे अनेक खंडों का चक्कर लगा है। अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ, फिर उसके बाद में अफ्रीका भी जाना हुआ, फिर यूरोप में भी चक्कर लगते रहे, फिर अमेरिका में भी जाना हुआ, फिर अब कुछ समय के बाद साउथ अमेरिका में भी चक्कर लगेगा। तो कई स्थानों पर चक्कर इस वर्ष में बहुत लगते रहे हैं, परंतु उसमें कुछ बातें मैं उसका थोड़ा बताना चाहेंगी। एक तो आइसलैंड में जो वहां की प्रेसिडेंट है वो माता है आजकल, और वो वैसे बिजनेस में बहुत प्रसिद्ध थी अमेरिका में, तो वो भी सारा उसको अनुभव है। फिर 60 वर्ष की आयु में उसने सोचा मैं अपने देश की सेवा करूं, तो वहां वापस आइसलैंड में पहुंची है। और हर 2 वर्ष अपना एक विशेष कार्य चलता है, खास आइसलैंड में ही, उसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। उसमें अनेक औरों को भी भाग लेने का, उनके साथ कार्य करने का मौका बनता। तो उसने, माता जो आई थी प्रेसिडेंट, उसने कहा कि जो भी बाहर की समस्याएं हैं वो तो मनुष्यों की बनाई हुई है, और मनुष्य अपने हिसाब से तो अनेक प्रकार की पुरुषारित करते रहते हैं कि उन बातों को ठीक करें, परंतु देखा जाता है कि वो सब प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती जा रही है, किसी भी प्रॉब्लम को हम हल नहीं कर पाए हैं। तो मैं ये मानती हूं कि अभी पहले हमें अंदर जाना होगा, ये पब्लिक में सभा के बीच कह रही है, हमें अंदर जाना होगा, और जब हम अंदर जाएंगे तो ही फिर हमें हर प्रकार का उत्तर मिल सकेगा। और फिर जब मेडिटेशन भी किया तो उस समय बस आंखों को पूंछती रही, उसका वैसे उसका अभ्यास है मेडिटेशन का, परंतु राजयोग का मेडिटेशन का तो विशेष ही अनुभव होता। तो वो ही फोटो उसका जो नेशनल पेपर ये इंटरनेट पर आता, उसमें वो ही फोटो उन्होंने छापा कि माता कैसे अपनी आंखों को पूंछ रही है, क्योंकि भाषण करते हुए तो कई फोटोज होते ही है, परंतु ये एक नए प्रकार का फोटो था तो वो ही उन्होंने छाप लिया। परंतु वो फिर दो तीन बारी और भी मिलती रही तो कहती है कि मुझे भारत आने का बहुत मन है, और भारत में भी आपके पास जो माता प्रेसिडेंट है, हमारा मन है हम उससे मिले। तो वो तो नेचुरली आएंगी तो उसके साथ ही होगा। तो उसका भी बता रही थी कि कुछ कार्य कुछ चल रहा है, अभी देखते हैं और आगे क्या होता। परंतु अभी अमेरिका में जो जाना हुआ 30 ये कॉल ऑफ टाइम के कार्य के लिए, पहली बारी है जो मैंने अमेरिका में इतना सभी लोग निराश हो गए हैं वो सीन देखी। बड़े बड़े लोग जो वैसे भी कॉल ऑफ टाइम में विशेष प्रसिद्ध लोगों को ही बुलाया जाता, तो वो लोग कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश का ही शब्द कहती हूँ, हमने कभी ऐसे डिस्पेयर, बिल्कुल ना उम्मीद हम हो जाए, कभी हमने ऐसे डिस्पेयर की फीलिंग नहीं आई है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि आगे का भविष्य क्या। तुम्हें पॉलिटिक्स की बातें तो नहीं बताएंगी, परंतु आप जानते हैं कि वहां क्या क्या चल रहा है आजकल। तो इसी कारण से ऐसे ऐसे लोग सब यही कहे कि बिल्कुल हमारे सामने आगे अंधेरा लग रहा है, कैसे हम आगे बढ़ सकते। 40 लोगों में से तो 10 लोगों ने कम से कम ये शब्द वर्णन किया, और बाकी औरों के मन में भी बातें तो चल ही रही थी। और कईयों ने फिर ये भी बिल्कुल स्पष्ट करके बताया कि हम लोग जैसे कि खाली हो गए हैं, हम अपने को भरने के लिए आए हैं। अभी उस दर्जे वाले लोग कहे कि हम खाली हो गए हैं, इससे ही आपको लगता है कि समय कहाँ तक पहुंचा है और कितना नजदीक तक हम आकर पहुंचे हैं। तो उन लोगों को तो 3 दिन के अंदर चेहरा ही चमकने लगा, और फिर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी सुनाते रहे। बहुत करके जब ये फर्स्ट टाइम साइलेंस में बैठती है तो आधे लोग कुछ कभी साइलेंस का अनुभव नहीं किया है, आधे लोगों ने कुछ अपना अभ्यास किया हुआ होता है, और कुछ कुछ जो फिर साइलेंस का मौका रखते हैं करीब 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो कोई बहुत लंबा साइलेंस नहीं होता, परंतु इतना तो होता ही है। तो उस बीच में बहुत करके जब वो बाहर नेचर में घूमते हैं साइलेंस में ही, परंतु फिर नेचर की बातें आकर बताते हैं कि पंछी ऐसे देखा, फूल ऐसे देखा। हम उनको समझाते तो है साइलेंस का मतलब है परमात्मा को याद करना, परंतु जो उनकी स्थिति है वो फिर ऐसे वर्णन करते। इस बारी किसी ने भी ऐसे वर्णन नहीं किया, हरेक ने बताया। किन्हों ने तो बताया भगवान का अनुभव, कईयों ने बताया अंदर जाने से कितना सुकून प्राप्त हुआ वो अनुभव। और उस सर्कल में 2 व्यक्ति जो बैठे थे उसका मैं चंद शब्दों में बताती हूँ अनुभव, क्योंकि सभी का वो डिस्पेयर का मूड था। तो हम लोगों ने सोचा कि चक्कर की बात उनको बताएं, नहीं तो विदेश में चक्कर की बात इतना सहज कोई स्वीकार नहीं करते, पुनर्जन्म को ही नहीं मानते, तो चक्कर तो उससे बहुत दूर की बात है। तो धीरे धीरे उनको ज्ञान सुना दी जाती, फिर कुछ लोग चक्कर को भी समझते। वो जो बाबा के बच्चे हैं उनको तो पहचान हो जाती, वो तो चल पड़ते। परंतु ये नए लोग, तो हम लोगों ने सोचा इनको भविष्य की उम्मीद क्या देनी, चक्कर की बात उनको जरूर बतानी चाहिए। तो जैसे ही उस सारी चक्र का डिटेल तो नहीं बताया, परंतु कलयुग की समाप्ति, सत्युग का आह्वान, उसकी तैयारी बस इतना तक ही सुनाया। तो उसमें एक वहां की, आप जानते हैं कि जो आदिवासी है उनको रेड इंडियन कहते हैं, क्योंकि जो पहले इंडिया ढूंढने निकले उन्होंने सोचा हम इंडिया पहुंच गए हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, इंडिया दूसरे तरफ था, तो फिर उन्होंने रेड इंडियन नाम उनको रख लिया। तो फर्स्ट टाइम एक वहां का होपी इंडियन का लीडर वो आकर के पहुंचा था, क्योंकि वो आजकल जो अपना क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें आदिवासियों को विशेष बुलाते हैं, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि जो आदिवासियों ने जिस तरह से प्रकृति के साथ व्यवहार रखा है, उन्होंने अहिंसक वृत्ति से प्रकृति को संभाला है, और जो उसके बाद जो मॉडर्न लोग आए हैं उन्होंने तो अपनी हिंसक वृत्ति से, वो तो देख ही रहे हैं कि क्या हुआ है। तो आदिवासियों को बहुत मान से वो बुलाती है, खास करके आदिवासियों के लीडर। तो ये जवान था परंतु आदिवासियों का होपी इंडियन का लीडर था। तो उसने पहले तो ये कहा कि लास्ट में सर्कल के अंदर ही बोला सबके सामने कि आप लोग क्यों ये सोचते हो कि ये अंधेरे का समय है और लोगों में बुराई है। हमें शास्त्र में बताया गया है आप लोग किसी की भी बुराई मत देखो। तो मैंने भी हाँ हाँ ऐसे ऐसे किया, क्योंकि मैं समझ रही थी कि किस भावना से कह रहा। ये कहता है परंतु हम लोगों के पास भी ये प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है कि हाँ अच्छा संसार अवश्य ही आएगा, और हमें अपनी अंदर की तैयारी करनी है उस अच्छे संसार के लिए। तो उसने ये बात सुनाई। फिर एक और उस सर्कल में था, वो तो बहुत जवान था, और ये जवान वाला व्यक्ति ईरान का ओरिजिनली था, अभी तो अमेरिकन है, परंतु 24 घंटे उसने कोशिश की थी मां जो ईरान में है उसके साथ संपर्क रखने की, और वो नहीं बन पाया। फिर आखिर उसकी मुलाकात हुई तो बहुत उसको शांति हुई कि माँ मेरी ठीक है, क्योंकि वहां उन्हीं दिनों में वॉमिंग चली थी और नेक्स्ट डे ही सभी पहुंचे थे इस कार्य के लिए। तो फिर कहता है, वो भी सर्कल में ही कहता कि जो मैंने चक्कर की बात सुनी, मेरे मन के अंदर बहुत एक नया उमंग आया कि हाँ हम इंसान भगवान की मदद से इस संसार को कुछ अच्छा संसार बना सकते। तो एक तरफ वो बात, दूसरी तरफ वो बात, परंतु बहुत बहुत लोग अभी अप्रिशिएट करते हैं कि जो बाबा के घर आते हैं थोड़े समय के लिए, चाहे 3 दिन 4 दिन के लिए, वो बहुत प्राप्ति लेकर जाते हैं। तो बाबा ने विश्व भर के कोने कोने में जो स्थान बना करके रखे हैं सभी को सुकून देने के लिए, क्योंकि सभी तो शायद भारत मधुबन ना भी पहुंचे, परंतु उनको वहां पर ही कुछ थोड़ा सा भी अंश मात्र का अनुभव हो। और फिर जो उन्होंने नया स्थान लिया है बिल्कुल 20 विलेज के लगोलग, जो बहुत बड़ी जमीन थी, वो जैसे कि जो मकान वहां था वो बिल्कुल टूट, 7 छोटे छोटे मकान है तो सब टूट ही रहे थे। तो जो शहर का मेयर है वो ही मोहिनी दीदी को कहता था कि आप लोग ये क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि देखते हैं कि जो अपना 20 विलेज है कितना सुंदर बन गया है। तो 20 विलेज को भी करीब 20 साल होने जा रहे हैं, तो बहुत फ्रेंड्स बन गए हैं सारे आजू बाजू में, वो सब उनको कहते थे कि आप लोग ये ले लो। फिर उसमें लंबी कहानी चली, परंतु अभी वो स्थान अपना बन गया है। तो हम लोग जो भी सारे 40 लोग थे वहां, बिल्कुल 5 मिनट का ही रास्ता है, वहां पर गए योग करने के लिए, जैसे कि तैयारी होती। तो ये होपी इंडियन क्या करता, अपनी भाषा में अपनी प्रार्थना करता ब्लेसिंग्स का, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलिया में वहां भी जो आदिवासी है जब भी कोई प्रोग्राम शुरू करती है उसमें पहले जो आदिवासी लोग हैं उनको थैंक्स देती है कि आप लोगों ने इस धरती को संभाला और आज हमारा मौका बना है कि हम आपकी धरती पर मेहमान होकर के आए हैं। तो वो आदिवासियों को बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हाँ ये सही बात कह रही है क्योंकि हमारी ही ये जमीन है, ये लोग तो अभी आए हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही लगता था कि ये जो होपी इंडियन है वो भी हमें यही स्मृति दिलाता कि उन्हों का ही पहले ये जमीन थी और हम लोग तो पीछे आने वाले मेहमान हैं। तो वो भी बहुत सुंदर कार्य रहा। परंतु एक और लास्ट बात बताती हूँ कि अफ्रीका में फर्स्ट टाइम पूरा ही जो कॉल ऑफ टाइम का सर्कल था अफ्रीका के ही लोग थे। नहीं तो कभी जोहान्सबर्ग में भी हुआ है, मॉरिशस में भी हुआ है, एक बार नैरोबी में भी हुआ था। तो उसमें कई भारत वाले होते हैं, कई विदेश वाले होते हैं, परंतु यहाँ पूरा ही सर्कल वो अफ्रीकन के लोकल लोग थे। तो उस 10 देशों के आए हुए थे और उसमें फिर जो पहले दिन ही एक माता ने शुरू किया उसने भगवान का नाम लिया कि भगवान ने मुझे यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे मन की शांति बहुत जरूरत थी। तो आते ही वो तो बाबा का घर भी नहीं था, वो तो होटल थी, परंतु बाबा के बच्चे वातावरण ऐसे बना लेते हैं, कुछ योग भी विशेष करते हैं तो वातावरण भी ऐसे होता है। तो उसने ये तुरंत ही भगवान का नाम लिया, फिर तो सभी भगवान का नाम लेते रहे। तो कॉल ऑफ टाइम में फर्स्ट टाइम सब भगवान का नाम शुरू में ही लिए, परंतु ये अफ्रीका की विशेषता है कि वो भगवान को मानने वाले हैं। परंतु वैसे इतना नहीं तुरंत वो नहीं होता, धीरे धीरे होता। तो मुझे लगता है कि ये सब जो बातें अभी अनुभव की है वो रियालिटी, लोग बिल्कुल विश्व भर में तैयार है। निसार भाई ने एक मुझे अखबार का लिंक भेजा और उसमें अखबार का टुकड़ा था, एक वहां का प्रसिद्ध जर्नलिस्ट अखबार में नेशनल पेपर में ये लिख रहा है कि अभी तो हालतें ऐसी बिगड़ गई है जो भगवान ही आकर के इसका कुछ सुधार कर सकता। तो अफ्रीका के देश में तो भगवान का नाम लेना भी सहज है, परंतु साथ ही साथ लोग इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान ही अब कुछ ठीक कर सकता। बाकी दीदी की विशेषता एक सुनाती हूँ। जैसे बालक सुमालिक, दीदी न सिर्फ बालक परंतु स्टूडेंट लाइफ। दीदी जब पांडव भवन में हम दीदी के पास सुबह को जाते थे मुरली से पहले, दीदी कुछ मुरली का मंत्र सुना लेती थी, फिर बाहर निकलती थी और पहले देखती थी दादी के कमरे की लाइट ऑन है या ऑफ है। यदि ऑफ है मीन्स दादी कमरे से निकल चुकी, तो दीदी को चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी, परंतु जल्दी जल्दी मुझे टीचर से पहले वहां पहुंचना है, जल्दी जल्दी भाग के चलती थी। लिफ्ट भी नहीं था उन दिनों में, और फिर सीढ़ी चढ़ करके मेडिटेशन हॉल में आगे की लाइन में बैठती थी अपना नोटबुक और पेन लेकर के। और फिर जब देखती थी कि दीदी दादी के कमरे की लाइट ऑन है तो कहती हाँ ठीक है हम आराम से चलेंगे। पर दीदी को ये ख्याल रहता था कि दादी अभी मुरली सुनाने वाली टीचर है, हमें उनसे पहले जाकर के पहुंचना है। तो दीदी का हर प्रकार से, जैसे श्रीमत की भी बात थी, परंतु नियम जो होते हैं नियम अनुसार हर प्रकार का कायदा कानून हो। दीदी को मजाक करने में भी अच्छा लगता था, किसी से प्रश्न पूछती थी आज के मुरली में बाबा ने क्या कहा, तो फिर कई लोग एक जवाब दे देते थे बाबा ने कहा कि देह अभिमान को छोड़ो। दीदी क्या कहती थी, ये तो बूढ़ी माताओं का उत्तर है, फेल फेल फेल, तो मजाक भी करती थी। परंतु फिर दीदी को एक्यूरेट शब्द चाहिए था कि कहां तो ध्यान से मुरली सुनी। और फिर एक बार किसी से पूछा कि आज बाबा ने क्या बोला इस बात पर, तो उसने पूछा वो बात बताई। फिर दूसरे दिन मैं अच्छी तरह से तैयार होकर के गया कि मैं मुरली इतना अच्छा नोट्स लूं, ध्यान से पढ़ू सुनू, तो फिर वो तैयार होकर के गया। फिर दीदी ने प्रश्न क्या पूछा, कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा? तो दीदी को मजाक करने में भी अच्छा लगता था, तो हर बात नियम अनुसार। तो दीदी बालक सुमालिक बिल्कुल जी। ओम शांति।